परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी दूसरा थिस्सलुनीकियों नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरम्भ करें, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखिया रा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तुझको ही पाने की थी दिल में आस, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। मेरे मन को तू आया, खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तू आया। ऐसी खिली मेरे जीवन की बात, मैं मानू तेरा ही है मुझ पर एहसान। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। अंधियारे पथ पर देखी किरण जो तुझको ही पाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जिसे उसने हम सबों को फिर से दिया है ताकि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 से अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है मसीह के आगमन की वास्तविकता। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठते हैं। हमारी प्रार्थना है इस समय कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं मसीह के आगमन की वास्तविकता के बारे में, प्रभु उनके जीवन में ये बात ग्रहण योग्य होने पाए। और इतना ही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवनों को आप आश्रित करें, ताकि वे आपके प्रेम में, आपके वचन में और भी बलवंत किए जाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, जो निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान कीजिए, ताकि हर एक आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है मसीह के आगमन की वास्तविकता। अध्याय 2 के अंत में हमने देखा था कि विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है। पौलुस ने परमेश्वर द्वारा हमें ढाड़स बंधाने और भले वचन एवं कामों में स्थिर करने की चर्चा की है, और मसीह में हमें जो अद्भुत स्थान प्राप्त है उसके विषय में भी पौलुस ने प्रबोधन किया है। हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, और हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह एक गहरी बात है, यह उत्साहजनक एवं आनंददायक बात है। मेरे प्रियो, अब हम अध्याय 3 में आते हैं, जहां पौलुस कहता है कि हम विश्वासियों के कुछ उत्तरदायित्व हैं। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा कि वे अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलें। थिस्सलुनीके की कलीसिया को भी पौलुस यही बात कहता है, विश्वासियों का आचरण स्थिर हो। तो आइए हम पढ़ें दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद, जहां पर लिखा हुआ है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन विश्वासियों को इस दुष्ट संसार में जीवन यापन की शक्ति प्रदान करता है। वचन विश्वासी के आचरण को स्थिर करता है। लिखा है, अंत में हे भाइयों। अब वह अपने पत्र का अंत करने जा रहा है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। प्रार्थना प्रत्येक विश्वासी को करना है। मेरे विचार में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। प्रार्थना तो हर एक विश्वासी की उमंग है। यदि किसी काम में सफलता पाना है तो उसके पीछे प्रार्थना के बल की आवश्यकता है। प्रत्येक सफल सुसमाचार प्रचारक, वचन का प्रचारक, वचन का शिक्षक, जिसे परमेश्वर काम में ले रहा है, उसके पीछे प्रार्थना करने वाले होते हैं। जी हाँ, पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया से प्रार्थना का निवेदन करता है कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। पौलुस की सेवा बेजोड़ थी। वह एक दास था, एक सेवक था, वह एक प्रचारक था, वह एक पास्टर था और वचन का शिक्षक भी था। उसने थिस्सलुनीके में ये सब सेवाएं प्रदान की थी। उसने उन्हें प्रभु का उद्धार दिलाया और शिक्षा दी, और अब एक पास्टर होने के नाते उन्हें पत्र भी लिख रहा है। वह उन्हें वचन की शिक्षा ही नहीं दे रहा है, परंतु उन्हें शांति भी दे रहा है और उनको परामर्श भी दे रहा है। वह उनसे एक काम करने को कह रहा है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। मेरे प्रियो, आज आप पौलुस के लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, परंतु मेरे लिए आप अवश्य कर सकते हैं। मैं आपका आभारी होऊंगा प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। आज परमेश्वर के वचन के प्रतिष्ठान की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि मनुष्य वचन को अपने जीवन में गौरवान्वित करे। मुझे कष्ट और खेद होता है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास का दावा करने वाले भी वचन पर बहुत कम ध्यान देते हैं। प्रार्थना करें कि वचन में विश्वास करने का दावा करने वाले उस पर अनुसरण करने वाले बन जाएं। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूं कि पास्टर होना क्या है और बाइबल शिक्षक होना क्या है, सभाएं करना क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जगह जगह जाकर सभाएं करना पास्टर की सेवा से बहुत आसान है। पास्टर का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है क्योंकि वह बहुत से तर्कहीन मनुष्यों से व्यवहार करता है। पौलुस प्रार्थना की याचना करता है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में दुष्ट जन भी पाए जाते हैं? पास्टर को ऐसे लोगों से मुक्त कराने की आवश्यकता होती है। पास्टर का काम जच्चा बच्चा वाले डॉक्टर के समान होता है। वह एक शिशु को संसार में लाता है, जो एक कठिन काम है। इसके बाद वह उस शिशु को बाल विशेषज्ञ को सौंप देता है, जो देखता है कि उसको उचित पोषण प्राप्त हो रहा है या नहीं, उसके पेट में फंसी हवा पूरी तरह निकाली गई है या नहीं, और तब उसका टीकाकरण आदि सही समय पर हो। पास्टर ही तो बाल विशेषज्ञ है। वह झगड़ालू पवित्र जनों और शिशु विश्वासियों को संभालता है। यह एक बड़ा ही कठिन काम है। मेरा मन पास्टर के लिए गदगद हो उठता है। मेरे प्रियो, जब मैं सभाओं में प्रचार करने के लिए जाता हूं तो वहां बहुत अच्छे पास्टरों से मेरी भेंट होती है। मैं उन्हीं कलीसियाओं में जाने की इच्छा रखता हूं जहां पास्टर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और सही शिक्षा देता है तथा परमेश्वर की बातों के लिए खड़ा होता है। दूसरी ओर ऐसा ही पास्टर मुझे अपने प्रचार मंच पर चढ़ने देता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम ऐसे ही एक कलीसिया में प्रचार करके लौट रहे थे। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमने यहाँ एक सप्ताह बहुत अच्छा सेवा का समय बिताया है। मैं यहाँ काफी लंबे समय रहा हूँ। मेरे विचार में ये लोग बहुत अच्छे हैं और वे सोचते होंगे कि मैं अच्छा हूँ। मैं उनके साथ अधिक घुल मिल जाने से पूर्व ही वहां से निकल आया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे आने से पास्टर को सहायता मिली है, जबकि वह कहता तो है परंतु वही तो है जो वहां का बोझ और उत्तरदायित्व उठा रहा है। वही तो है जिसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं तो बस वहां से निकलकर चला जाता हूं। मेरे विचार में एक प्रचारक या एक भ्रमणशील बाइबल शिक्षक का कार्य पास्टर की तुलना में बहुत आसान है। मेरे प्रियो, पौलुस ने प्रार्थना का निवेदन किया कि वे टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचें। मेरा अनुभव तो यह भी है कि सुसमाचार प्रचार के काम में बाधा अन्य किसी की अपेक्षा कलीसिया के सदस्यों से ही अधिक उत्पन्न होती है। मुझ पर न तो मदिरा उद्योग ने, न मदिरालय ने और न किसी गुंडों ने घर किया। कम से कम मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मुझ पर वार करने वाले कलीसिया के कथित पवित्र जन रहे हैं। कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्टर को कठिन समय देते हैं। इसमें अत्यधिक दुख की बात है कि हम सब मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, सब में मसीही विश्वास नहीं है, अर्थात वे पौलुस द्वारा दी गई शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। कलीसिया की नींव प्रेरितों की शिक्षा ही है। हमें उसी का प्रचार करना है और उसी की शिक्षा देना है। मसीह के आगमन के सत्य को स्वीकार करना एक बात है, उसके प्रकट होने की कामना करना और उस महान सत्य के योग्य चाल चलना एक अलग बात है। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को इसी विषय पर लिख रहा है। यदि हम उसके आगमन की सच्ची लालसा करते हैं तो हम उसका प्रमाण वचन के संबंध और पृथ्वी पर अपने आचरण से प्रकट करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:3 में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यह एक अति उत्तम बात है। मैंने तो उसे अनेक बार निराश किया है, परंतु उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह सदैव विश्वास योग्य है। विश्वासी इस पद को कट्टरता से पकड़ा रहे। मेरे प्रियो, लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। जी हाँ, विश्वासियों को स्थिर होना है। इस पल घर अव्यवस्थित है, कलिसिया अव्यवस्थित है, विश्वासियों का जीवन अव्यवस्थित है। हमें दृढ़ता से स्थिर होने की आवश्यकता है। एक विश्वासी कैसे स्थिर होगा? परमेश्वर के वचन को जानने और अपने जीवन में उसके प्रभाव को ग्रहण करने के द्वारा। प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करता है। परमेश्वर का वचन आपको बुराई से बचाएगा। किसी ने कहा है, बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी और पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 3:4 में आगे पढ़ते हैं, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। विश्वासियों को विशेष काम करने हैं। पौलुस ने अपने प्रथम पत्र के 5:22 आज्ञाएं दी हैं, जिन्हें करना विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पर पौलुस कहता है, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। वह उन्हें प्रभु को सौंप देता है। उसे उन पर पूरा भरोसा है कि उसने उन्हें जो जो आज्ञाएं दी हैं उसे वे कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। उसे विश्वास था कि थिस्सलुनीके की कलीसिया अपनी अति उत्तम गवाही को बनाए रखेगी। आज आपकी कलीसिया की गवाही क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम में आचरण करना है। मेरे मित्रों, यदि आप आज परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में आचरण रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके मन में व्याप्त है और आप जानते हैं कि वह आपसे प्रेम करता है। आप इस प्रेम को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रदर्शित कर पाएंगे, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए वास्तविक बना सकता है। प्रेम आत्मा का फल है। आप हर किसी से प्रेम नहीं कर सकते और मेरे विचार में परमेश्वर चाहता भी नहीं है। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को लिखा था कि हमारा प्रेम विवेकी हो, अर्थात हमें मनुष्य से प्रेम करने में सावधानी रखना है। आप अपनी बाहें फैला दोगे तो दिल दुखाने वाले बहुत से मिल जाएंगे। आगे लिखा है, मसीह के धीरज की ओर। इसका अर्थ यह नहीं कि आप वाद विवाद करें, परंतु प्रभु के आगमन की धीरज धरकर प्रतीक्षा करें। ओह, ये पद अति अद्भुत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:6 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। ध्यान दीजिए, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। पौलुस व्यर्थ की बातें नहीं करता था। विश्वासी को अनुचित चाल चलने वाले के साथ नहीं रहना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि किसी शराबी को गवाही देने के लिए आपको मधुशाला में बैठना होगा और उसके साथ शराब भी पीना होगा। मैं एक महिला को जानता हूं जो इस विधि को अपनाकर मद्य व्यवसाय का काम करती थी। परमेश्वर कहता है कि हमें दूर रहना है। हमें उन्हें गवाही तो देना है, परंतु उनके स्तर पर भाईचारा नहीं निभाना है। कहने का मतलब यह है कि किसी चोर को आप गवाही देने के लिए आप स्वयं भी चोर न बन जाएं, परंतु उन्हें गवाही के द्वारा सत्यता को बता दें। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि हमें किसका अनुसरण करना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। आप वैसे ही होंगे जैसे आपकी संगति होगी। विश्वासियों को अपनी संगति के विषय में अत्यधिक सावधान रहना है। आपको किसके साथ संबंध रखना है उसमें भी सतर्क रहना आवश्यक है। विश्वासी अपने काम में स्थिर हों। थिस्सलुनीके के विश्वासी प्रभु यीशु के साथ उचित संबंध में थे और परिणाम स्वरूप उन्हें सताया जा रहा था। पौलुस ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और उन्हें निर्देश दिए और प्रोत्साहित भी किया। अब वह उन्हें बताता है कि वह भी कष्टों और परेशानियों का सामना कर रहा है। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के लिए खड़े होंगे तो आपको कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप सताए जाएंगे, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, परंतु आपको धीरज के साथ खड़े रहना है। हमने देखा है कि विश्वासी को परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है। फिर हमने यह भी देखा है कि विश्वासी का आचरण कैसा महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। अब हम विश्वासी के काम के विषय में देखेंगे। यह भी एक व्यवहारिक विषय है। ऐसे काम जिनके कारण परमेश्वर का वचन हमारे मन और जीवन में प्रवेश करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:8 में लिखा है, और किसी की रोटी मुक्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। लिखा है, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई। उसने खाया तो चुकाया भी। परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। पौलुस अपने प्रचार कार्य के लिए किसी से वेतन नहीं लेता था। यह विशेष करके उसकी प्रथम प्रचार यात्रा के संबंध में था। जब वह किसी नगर में प्रचार करने के लिए जाता तो वहां उसके लिए होटल में कमरा आरक्षित नहीं रखा जाता था। उसके लिए प्रेम भेंट नहीं ली जाती थी। उसे किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता था। वह अपना खर्चा स्वयं उठाता था। उसने थिस्सलुनीके और कुरिन्थ की कलिसिया को यह बात बताई। कलिसियाओं की स्थापना करते समय वह अपना तंबू बनाने का काम करके खर्चा चलाया करता था, परंतु कलिसियाओं की स्थापना हो जाने के बाद जब वह दूसरी और तीसरी प्रचार यात्रा के समय कलिसियाओं से भेंट करने के लिए गया, तब उसने उनसे भेंट स्वीकार की। गलातिया प्रदेश की कलिसियाओं से तो उसने स्पष्ट कहा था कि उन्हें देना चाहिए। फिलिपी की कलिसिया को भेंट के लिए उसने धन्यवाद कहा। अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में उसने यरूशलेम के गरीब पवित्र जनों के लिए भेंट उठाई थी। अतः स्पष्ट है कि मसीह के आगमन के महान सत्य के कारण पौलुस उन्मादी होकर आर्थिक प्रबंधन का तर्क विहीन नहीं हुआ था। प्रत्येक युग में कुछ धर्मांध होते हैं। पिछली शताब्दी में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर घर की छत पर प्रभु की प्रतीक्षा में घर की छत पर बैठ गए। क्या प्रभु आपको घर के भीतर से नहीं उठा सकता है? यदि घर की छत पर ही बैठना आवश्यक था तो किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठना और भी अच्छा होता। सफेद चद्दर ओढ़ने की क्या आवश्यकता है? मेरे विचार में तो प्रभु हमें उसकी उपस्थिति के योग्य उचित वस्त्र पहना देगा। संपत्ता बेचने की क्या आवश्यकता है? क्या हम पैसा लेकर प्रभु के साथ जाएंगे? देखिए, मनुष्य प्रभु के शीघ्र आगमन में विश्वास करके भी कैसे मूर्खता के काम करता है। और सच तो यह है कि बाइबल की ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो आपके प्रभु के लिए अधिक परिश्रम और अधिक बुद्धिमानी का काम करने की प्रेरणा दे। यदि आप विश्वास करें कि वह आने वाला है तो आप उसके कार्य के किसी न किसी क्षेत्र में व्यस्त हो जाएंगे। आप संसार में परमेश्वर के वचन के कुछ बीज अवश्य डालेंगे कि फसल आए, ताकि लोग बचाए जाएं और आपके सेवा के द्वारा से लोग प्रभु को पहचान लें। आज दुख की बात तो यही है कि हम में से कई विश्वासी परमेश्वर के वचन की सत्यता को नहीं जानते हैं और यही कारण है कि उनके जीवन में गलत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को झांक करके देखें कि हम कहां पर हैं, हमारी कलीसिया कहां पर है, हमारा विश्वास कहां पर है, वचन की शिक्षा कहां पर है। यदि हमारे इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है तो अवश्य ही इस पर विचार करें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। तेरे आने से, तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। तेरे आने से, तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी
चाहे थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, मैं जीऊंगा।